ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर यहाँ से आपको जीतना है या इवन ड्रॉ भी खेलना है।
थोड़ी सी स्विंग कम है मगर पेस है, दैट्स अ गुड साइन, स्विंग वापस आ जाएगी। पर थोड़ी क्रिकेट खेल रहा है।
बॉलिंग टू स्टोक्स हु लीन्स बैक एंड हिट्स हिम थ्रू द ऑफसाइड, दैट विल बी इट, स्टोक्स इज फोर्थ टेस्ट सेंचुरी।
पाकिस्तानी टीम का सख्त इम्तिहान कीवी और कैंगरू के देश में, मोहम्मद आमिर माजी के मुकाबले में अब कितने मौसर, और स्पिन बॉलिंग का जाल इंग्लिश बैट्समैनों को काबू ना कर सका। खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के दौरे का बाकायदा आगाज न्यूजीलैंड ए के खिलाफ चार रोजा मैच से कर दिया है, लेकिन मैच का पहला दिन ही बारिश की नजर हो गया। पाकिस्तानी टीम का असल इम्तिहान शुरू होगा 17 नवंबर से, जब वो क्राइस्टचर्च के पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबले आएगी। न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी कैसी रहेगी, और क्या इंग्लैंड के दौरे के बाद इस दौरे में भी ये टीम अपने नाकदीन को अपनी शानदार कारकर्दगी से हैरान कर सकेगी? मैंने इस सिलसिले में बात की पाकिस्तान के साबिक कप्तान वकार यूनुस से। वकार यूनुस से मेरा पहला सवाल था कि टीम सिलेक्शन से आप कितने मुतमईन
हैं? टीम की जहाँ तक बात की जाए तो आई थिंक टीम यही बनती थी, शायद सोहेल खान की जगह किसी और को कंसिडर किया जा सकता था मेरे ख्याल में, मे बी हसन अली, एक लड़का जो अभी वनडेज में भी आपने देखे थे, वो भी अच्छी एनर्जी और अच्छी पेस से गेंद करते थे, लेकिन आई थिंक ओवरऑल ठीक टीम अनाउंस हुई है।
वकार यूनुस से मैंने ये जानने की कोशिश की कि वेस्टइंडीज के खिलाफ तो मोहम्मद नवाज को पांचवें बॉलर के तौर पर आजमाया गया, लेकिन क्या ये न्यूजीलैंड में तजुर्बा कामयाब रहेगा, या फिर पाकिस्तान छह मुस्तनद बैट्समैनों और चार बॉलर्स के साथ ही खेलेगा?
अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो लग्जरी नहीं है जो कि बाकी कुछ टीमों के पास है कि जी आप छठे नंबर पर एक मीडियम पेसर जो कि बैटिंग करता हो, वो लग्जरी पाकिस्तान में आपके पास ऑलराउंडर ऐसा कोई नहीं है जो रिप्लेस कर सके। हमारी मजबूरी है कि हमें छह बैट्समैन, हाँ आपको ये जरूर करना होगा कि अजहर को तैयार करना होगा कि वो ज़्यादा ओवर करे, हेल्पिंग हैंड बने, और यूनुस को करना होगा कि यूनुस में भी 8-10 ओवर दिन के करे तो हेल्पिंग हैंड हो, तो आई थिंक इस तरह से जा सकते हो। लेकिन अगर आप कहें कि जी आप पांच बैट्समैनों के साथ और फिर एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएंगे तो आई थिंक हम लोग उसके लिए भी तैयार नहीं है।
वकार यूनुस से मैंने पूछा कि अगर शर्जील खान को इतने अहम दौरे में तीसरे ओपनर के तौर पर मुंतखब करना ही था तो उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ मौका दिया जा सकता था जो नहीं दिया गया, इस सूरत में क्या शर्जील खान पर दबाव नहीं होगा जो पहली टेस्ट टीम में आए हैं?
देखिए अभी तो आप बैकअप के तौर पे ही चलाएंगे क्योंकि आपके दोनों ओपनर्स ने रन्स किए हुए हैं, इतनी वरी नहीं होनी चाहिए। हाँ शर्जील को आपने क्योंकि लेके जा रहे हैं साथ में, आप उसको सिखाइएगा, उसको फिट करें क्योंकि फिटनेस का इशू भी है, तो आई थिंक ये हेल्प करेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को कि उनको साथ का टूर लेके जाना, अगर जरूरत पड़ी तो खिला भी दें, लेकिन यंगस्टर है साथ जाने में को बहुत कुछ सीख के आएगा।
वकार यूनुस से मेरा आखिरी सवाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज से मुतालिक था कि क्या पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में वो कुछ कर सकेगी जो उसने इंग्लैंड के दौरे में कर दिखाया था?
देखिए दो मुख्तलिफ सीरीज है मैं ये कहूँगा, क्योंकि इंग्लैंड में अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 20-25 साल का उठा के देखेंगे तो हम लोग वहाँ पे अगर कोई हारे भी हैं तो एक आधी सीरीज हारे हैं, वरना हमेशा हम या तो जीते हैं या हमने सीरीज ड्रॉ की है, तो हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड वहाँ का बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं अच्छा, और दूसरी बात है कि पाकिस्तान वहाँ पे 2-3 हफ्ते पहले भी चला गया था तो कंडीशंस भी अच्छी, पाकिस्तान उसके यूज टू हो गए थे, घर से भी थोड़ी बहुत तैयारी करके गए थे तो मेंटली तौर पे बहुत तैयार थे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा टफ होगा, पिचेस मुख्तलिफ होती हैं, पिचेस ज़्यादा बाउंसी होती हैं, डे एंड नाइट मैच भी है, तो आई थिंक टफर ओपोनेंट हैं ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, तो आई थिंक ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर यहाँ से आपको जीतना है या इवन ड्रॉ भी खेलना है, तो आई थिंक पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलना, इंग्लैंड से भी ज़्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा इनको हराने के लिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया टीम इतना अच्छा नहीं खेल रही अपने होम से बाहर, लेकिन अपने होम में हमेशा वो तगड़ी टीम होती है।
स्पॉट फिक्सिंग में सजा याफ्ता फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर 5 साल पाबंदी खत्म होने के बाद अब पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हैं, और इस वक्त वो पाकिस्तानी टीम के साथ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। मैंने साबिक कप्तान वसीम अकरम को जहमत दी और उनसे पूछा कि 5 साल पहले वाले मोहम्मद आमिर और अब के मोहम्मद आमिर में आपको क्या फर्क महसूस हुआ है?
थोड़ी सी स्विंग कम है मगर पेस है, दैट्स अ गुड साइन, स्विंग वापस आ जाएगी। थोड़ी क्रिकेट खेल रहा है, खेली काफी है उसने, बट एक आधा अच्छी विकेट पे उसको जब स्विंग होना शुरू होगा आई थिंक ही विल बी फाइन, सो एज लॉन्ग एज पेस देयर वी डोंट हैव टू वरी।
वसीम अकरम से मेरा अगला सवाल पाकिस्तान सुपर लीग से मुतालिक था कि जिस तरह भारत को आईपीएल से कई बासलाहियत खिलाड़ी मिले तो क्या पाकिस्तान सुपर लीग भी इसी तरह पाकिस्तानी क्रिकेट को नया टैलेंट दे सकेगी?
देखिए आईपीएल में 2-3 साल बाद उनको जाके प्लेयर मिले हैं, प्लेयर क्या मिले हैं, प्लेयर टैलेंट तो था वहाँ पे, टैलेंट पाकिस्तान भी है, प्लेयर में कॉन्फिडेंस आया, उनमें कॉन्फिडेंस ये आया कि वो दुनिया के किसी भी टीम से कम्पीट कर सकते हैं. जब ये कॉन्फिडेंस आप में एज अ प्लेयर आता है तो यू आर अनबीटेबल एंड दैट्स व्हाट पीएसएल इज गोइंग टू डू. अभी लड़के ये पीएसएल खेल रहे हैं, ग्रेट्स ऑफ द टी20 जो गेम है उससे शोल्डर रब कर रहे हैं, तो उनको पता लग रहा है कि करना क्या है, माइंडसेट क्या है, उनकी ड्रिल्स क्या हैं, वो करते क्या हैं. सो ये आपको दो साल बाद ये आपकी पाकिस्तान की टीम जब ये पीएसएल से लड़के निकलेंगे तो तैयार होंगे पाकिस्तान, ये नहीं कि पाकिस्तान टीम में आके तैयार होते हैं, यहाँ से आपको पके पकाए मिलेंगे जो जाके दुनिया की किसी भी टीम को कम्पीट कर सकेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे. शर्जील को देख लें, खालिद लतीफ़ को देख लें, समी को देख लें, मैं अपने नाम नहीं और भी बड़े नवाज भी वहीं से हमें देखा गया है, फिर असगर एक लड़का, काफ़ी सारे लड़के, हसन जो हमारा अब फास्ट बॉलर है, हसन अली, यू नो ये लड़के सारे यहीं से गए बिकॉज उन्होंने पता लगा कि ये एक्चुअली कैन प्ले वेल, दे एक्चुअली कैन कम्पीट, उन्हें बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्टर चाहिए, थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए और ये पीएसएल दिलाएगी उनको.
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग के काबिल हो सकेंगे या नहीं, इसका फैसला 17 नवंबर को ब्रिस्बेन में होगा. तफसीलात अब्दुल्ला फारूकी से.
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज के लिए हालात अच्छे नहीं हैं. पहले वो मशकूक बॉलिंग एक्शन की जद में आए और फिर काबिल जिक्र कारकर्दगी ना दिखाने पर टीम से ही बाहर हो गए. मोहम्मद हफीज का बॉलिंग एक्शन पहली बार नवंबर 2014 में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अबूजाबी में खेले गए टेस्ट मैच में रिपोर्ट हुआ था. मोहम्मद हफीज ने अपने बॉलिंग एक्शन का बायोमैकेनिक टेस्ट गुज़िश्ता साल अप्रैल में चेन्नई की लेबोरेटरी में दिया था और उनका बॉलिंग एक्शन क्लियर करार दे दिया गया था. तहम वो जून 2015 में दूसरी मर्तबा मशकूक बॉलिंग एक्शन की जद में आ गए जब पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गॉल में खेले गए टेस्ट मैच के एम्पायर्स ने उनके बॉलिंग एक्शन के बारे में आईसीसी को रिपोर्ट की. आईसीसी के कवायद और जवाबित के तहत अगर कोई बॉलर एक साल में दो बार मशकूक बॉलिंग एक्शन की जद में आ जाए तो उस पर एक साला पाबंदी आयद हो जाती है. मोहम्मद हफीज गुज़िश्ता कुछ अरसे घुटने की तकलीफ में मुब्तिला रहे जिसकी वजह से वो अपने बॉलिंग एक्शन का बायोमैकेनिक टेस्ट नहीं करा सके. इंग्लैंड के दौरे में मोहम्मद हफीज से ना रन्स बन सके और ना ही वो कैचेस दबोच सके. कुछ मुबसरीन कहते हैं कि मोहम्मद हफीज की टीम में जगह उसी सूरत में बनेगी जब वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन आदाद शुमार कुछ और ही कहते हैं. पिछले चंद बरसों के दौरान वो पाकिस्तान के चार बेहतरीन बैट्समैनों में से एक रहे हैं. मोहम्मद हफीज टीम में कब दोबारा जगह बनाने में कामयाब होंगे ये सवाल फिलहाल उतना अहम नहीं जितना अहम ये है कि क्या वो अपना बॉलिंग एक्शन क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे.
भारत और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज शुरू हुई तो हर किसी के जहन में यही बात मौजूद थी कि जिस तरह भारतीय स्पिनर्स खुसूसन अश्विन ने न्यूजीलैंड के बैट्समैनों को अपने जाल में गिरफ्तार किया था, इंग्लिश बैट्समैन भी आसानी से उनके काबू में आ जाएंगे. लेकिन इंग्लैंड की टीम राजकोट के पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में ही 537 का स्कोर करने में कामयाब हो गई.
वेरी फाइन डन टू मिश्रा हु विल हैव टू रन अराउंड, दैट्स हिज 102. वेल प्लेड जोरू.
हियर्स टू डेविड बॉलिंग टू स्टोक्स हु लीन्स बैक एंड हिट्स हिम थ्रू द ऑफसाइड, दैट विल बी इट. स्टोक्स इज फोर्थ.
इंग्लैंड की इस मजबूत पोजीशन में जो रूट, मुइन अली और बेन स्टोक्स की सेंचुरियों ने अहम किरदार अदा किया जो भारतीय स्पिनर्स अश्विन, जडेजा और मिश्रा को बड़े एतमाद से खेले. 19 साल हसीब हमीद ने भी अपने टैलेंट की हल्की सी झलक दिखाई, लेकिन दुनिया उनसे बड़े कारनामे की मुंतजिर है. और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद.
पाकिस्तान के प्रोफेशनल बॉक्सर मोहम्मद वसीम इस माह की 27 तारीख को फिलिपाइन के जिमिल मैग्रोमो से सोल में मुकाबला करेंगे. मोहम्मद वसीम अभी तक चार प्रोफेशनल मुकाबले कर चुके हैं और उन्होंने चारों मुकाबले नॉकआउट से जीते हैं. एशिया का वीमेन 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट इस माह की 27 तारीख से थाईलैंड में खेला जाएगा. टूर्नामेंट में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया और मेजबान थाईलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी. बांग्लादेश क्रिकेट टीम अगले माह के आखिरी हफ्ते न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. वो इस दौरे पर न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल, 2 टेस्ट और 2 2020 मैच खेलेगी. बहरीन में इंडिया के परतल जोशी ने अपने भाई को मेन सिंगल्स फाइनल में 2-1 से हराकर बहरीन इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट जीत लिया. इंडोनेशिया की श्री फातमा वती ने खवातीन का सिंगल्स टाइटल जीता. टोक्यो में एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है. पाकिस्तान की 3 रुकनी टीम भी चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही है. सिंगापुर में मलेशिया ने सिंगापुर को सिंगापुर फुटबॉल कप में 3-1 से और ब्रुनाई फुटबॉल सुपर लीग में ब्रुनाई ने यंग लायंस को 5-3 से शिकस्त दी.
इसी के साथ अब अब्दुल रशीद शकूर को इजाज़त दीजिए.